हम लोग अपने जनसंचार विषय का पहला अध्याय पढ़ेंगे। तो प्यारे शिक्षार्थियों, हम लोग अपना पाठ एक प्रारंभ करते हैं और पाठ एक का नाम है संचार परिचय। संचार का परिचय हम आपसे करवाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कक्षा 10 तक आप संचार के बहुत सारे पहलुओं से रूबरू हो चुके हैं, चाहे वो परिवार में अपने माता पिता के साथ संवाद हो, अपने घर के आसपास अपने मित्रों के साथ घूमने फिरने के दौरान कही गई बातें हो, संवाद हो, टेलीफोन के द्वारा किया गया संपर्क हो, या कक्षा कक्ष के दौरान अपने अध्यापक के साथ प्रश्नोत्तर या अध्ययन अध्यापन के दौरान की गई वार्ता हो, इन सभी स्थानों पर, इन सभी उपलक्ष्यों पर आपने संचार स्थापित किया, अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई और दूसरी जगह से आपको प्रत्युत्तर भी मिला। साथ ही साथ कई बार आपने देखा होगा कि जैसे आपको भूख लगती है तो आपकी माँ समझ जाती है कि आपको भूख लगी है, या कभी कभी आपके पिताजी आपसे कुछ पूछते हैं तो आप कंधे उचकाकर या हाथ हिलाकर ही अपनी भाव भावनाओं से उसका उत्तर दे लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हम बहुत सारी अन्य गतिविधियों से भी संचार करते हैं। तो हम लोग ये कहेंगे कि संचार के कई आयाम है, कई तरीके से किया जाता है। तो निश्चित रूप से प्रथम पाठ के अंतर्गत, संचार परिचय के अंतर्गत, हम लोग जिन उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे प्यारे शिक्षार्थियों, वो है संचार की व्याख्या करना हम समझ जाएंगे, मनुष्य संचार क्यों करता है हम लोग यह जान जाएंगे, साथ ही साथ हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि शाब्दिक या अशाब्दिक संचार किसे कहते हैं, संचार के विभिन्न प्रकार क्या हैं, वैयक्तिक संचार का अर्थ और उसका निरूपण जान पाएंगे, साथ ही साथ अंतरवैयक्तिक संचार की व्याख्या करना तथा उसके महत्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस पाठ के अंत में हम लोग समूह संचार और लोक संचार के बीच अंतर करना भी सीखेंगे। तो शिक्षार्थियों, अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसा आपकी सेल्फ लर्निंग मटेरियल स्व अध्ययन सामग्री में दिया गया है, या अगर आपको स्व अध्ययन सामग्री अभी तक नहीं मिली है तो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से इसका अध्ययन कर सकते हैं। वेबसाइट पे सभी स्वाध्ययन सामग्री, सभी आपकी पुस्तकें, सभी आपका कंटेंट दिया हुआ है। आप हमारी वेबसाइट को लॉगिन करके वो देख लीजिए। तो अगर हम लोग बात करें कि संचार कैसे प्रारंभ हुआ होगा, तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं संचार के मानवीय बोध के बारे में। जैसे हम लोग किसी को सूचना देने के बारे में सोचते हैं तो या तो शब्दों का प्रयोग करते हैं या भाव भंगिमाओं का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए आप अपने मित्र से मिलते हैं जब, तो अभिवादन स्वरूप उससे हाथ मिलाते हैं या हाथ हिलाकर उसका अभिवादन करते हैं। तो आप देखिए, इस हाथ हिलाने में या आपके द्वारा हेलो शब्द कहे में या नमस्ते करने में या हाथ मिलाने में एक मानवीय संचार का बोध होता है। इसका मतलब है कि अमुख व्यक्ति आपको जानता है, आज आप उससे मिले हैं, आप किसी प्रसंग वस्तु से किसी बात पर चर्चा करेंगे। तो मानवीय संचार के बोध को अगर हम लोग मानव इतिहास की ओर देखें, मानवता की ओर देखें कि किस प्रकार पे आ गया ऐतिहासिक मानव संचार करता था, तो आप देखेंगे कि जब कभी आप लोग गुफाओं में कभी गए होंगे घूमने, अजंता एलोरा की, या दिल्ली में किसी पुराने किले में घूमने गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ की जो कलाकृतियां हैं, वहाँ के जो लेख हैं, वहाँ के जो शिला लेख हैं, वो भी कुछ ना कुछ आपसे कहने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारा जो अशोक चक्र है उसको भी हम लोगों ने अशोक युग से लिया है, अशोक पीरियड से लिया है। तो देखिए, उन चीजों का महत्व तो आज भी है, चाहे वो सिंबॉलिक रूप से कही गई है, प्रतीकात्मक रूप से, चाहे शब्दों के माध्यम से कही गई है। तो समय समय जैसे प्रागैतिहासिक काल के बाद भाषाओं का विकास हुआ और मनुष्य ने अपने भावों के अलावा शब्दों के माध्यम से भी अपना कथन कहना, संचार करना प्रारंभ किया, तो एक नई सी क्रांति आई और अक्षरों के साथ साथ लेखन का प्रारंभ हुआ, विचार तथा सोच तथा भाव भंगिमाएं अब सिर्फ विलुप्त हो जाने वाली संचार सामग्री न हो करके लिखित रूप से भविष्य में प्रस्तुत होने वाली संचार के रूप में भी आपके सामने आने लगी। तो प्यारे शिक्षार्थियों, सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि हम संचार क्यों करते हैं। एक मन में प्रश्न आता है कि हम संचार क्यों करते हैं, तो अब इसका मैं क्या जवाब दूं कि जैसे आपकी माँ पूछती है कि बेटा क्या आपको भूख लगी है, तो आप सिर हिला के हाँ या ना में जवाब देते हैं। या कभी आप घर के बाहर रहते हैं, आपके मित्र कहते हैं क्या खेलने चलोगे मेरे साथ, तो आप उसका जवाब देते हैं। कक्षा कक्ष में जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके अध्यापक आपसे कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उसका उत्तर देते हैं। कभी कोई जानकारी बताने के लिए, कभी उसकी पुष्टि करने के लिए, या किसी रहस्य को उद्घाटित करने के लिए, या अपने रूठ गए मित्र को मनाने के लिए, या अपनी माता जी से मिठाई मांगने की स्वीकार्यता के लिए, या किसी विषय पर अपने मित्रों का समर्थन प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ कभी कभी हम लोग किसी की आलोचना करने के लिए भी संचार करते हैं। तो इसका मतलब है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सुबह से शाम तक घर के अंदर घर के बाहर कार्य क्षेत्र में आपको हमेशा संचार की आवश्यकता रहती है, चाहे वो छिपाने के लिए हो कोई चीज, या प्रेरित करने के लिए हो, स्वीकार करने के लिए हो, उद्घाटित करने के लिए हो, सीखने के लिए हो, या हम लोग जो शिक्षा दे रहे हैं, जो मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ आज मुक्त विद्यावाणी के माध्यम से, इसको भी आप संचार मान सकते हैं, संचार कह सकते हैं। तो अगर हम लोग वैज्ञानिक शब्दों में इसकी परिभाषा करें कि संचार क्या है, तो अगर हम ये देखें कि अगर हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लें, जैसे आप अपने मोबाइल के माध्यम से एक SMS लिखते हैं, शॉर्ट मैसेज लिखते हैं, और वो आपके मित्र तक जाता है, या आपके घर के किसी संबंधी तक जाता है, या आपके बॉस तक जाता है। आपने मान लीजिए लिखा मैं मीटिंग में हूँ, कृपया 4 बजे फोन करें, तो इसका मतलब है कि उस संदेश को पाने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि इस समय आप व्यस्त हैं और 4 बजे के बाद ही आपसे फोन पर बात की जा सकती है। तो अब देखिए कि कई कई बार देखिए हम ये देखते हैं कि संदेश में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले हमने बात की कि संदेश में हम लोग भाव भंगिमाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हम एक परिभाषा के तौर पर संचार की बात करें, तो संचार एक समझा गया संदेश है। अगर आपने बोला है कि 4 बजे फोन करें, मैं मीटिंग में हूँ, यह बात प्रापक द्वारा जिसको कि आपने संदेश भेजा है उसको समझ में आ गई है, तो उसे हम संदेश कहेंगे। संचार एक समझा गया संदेश है, लेकिन कई कई बार एक बाधा आती है कि संदेश को यदि ना समझा जाए तो क्या हम कह सकते हैं संचार पूरा हुआ। तो मुझे बड़ा संदेह है कि आपने एक संदेश भेजा जरूर था, लेकिन अगर वो समझा नहीं गया है तो आपका संचार का क्रम पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे 2-3 चीजें बातें निकल के आती है कि एक तो संचार को आप इतना सरल और सहज बनाएं कि इसका प्राप्तकर्ता इसे आसानी से समझ ले। इसका मतलब है कि संदेश स्पष्ट होना चाहिए, और दूसरा मतलब है कि संदेश इस स्तर का स्पष्ट होना चाहिए कि जिसके लिए ये भेजा जा रहा है वो इसको समझ ले। आप एक उदाहरण के तौर पे देखें, जब कोई राजनीतिक नेता आपके आसपास के क्षेत्र में भाषण करते हैं और आपके हित की बात करते हैं, तो आप देखिए कितनी जल्दी से वो बातें समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर जब आपसे कहा जाता है कि हम आपके लिए विद्यालय का निर्माण कराएंगे, तो आप समझ जाते हैं कि ये हमारे हित की बात है, और अगर हम इनको आगे बढ़ाएंगे अपने राजनीतिक नेता को तो ये काम वो पूरा करेंगे। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है शिक्षार्थियों कि संचार सामाजिक संबंध बनाने में अपने आप को सक्षम होते हैं, संदेशों के माध्यम से सामाजिक संबंध बनते हैं, चाहे वो एक नेता और एक मतदाता के बीच में हो, चाहे वो कक्षा कक्ष में एक अध्यापक और विद्यार्थियों शिक्षार्थियों के मध्य में हो, चाहे वो परिवार में माता पिता और बच्चों के बीच में हो। तो हम अब ये कह सकते हैं कि संचार संदेशों के माध्यम से सामाजिक अंतर संबंध बनाता है। संचार का अर्थ है संचार संदेशों के माध्यम से सामाजिक अंतर संबंध बनाता है। तो अब मान लीजिए मैं कहता हूं कि आज बड़ी उमस है और मैं पढ़ने से ऊब गया हूं, तो इसका मतलब है आपके साथ बैठा हुआ आपका मित्र समझ जाएगा कि आज का जो मौसम है इसके कारण इसको अच्छा नहीं लग रहा है, ये उमस वाला मौसम शायद ये पसंद नहीं करता है, इसलिए कह रहा है कि मैं पढ़ने से ऊब गया हूँ। इसका मतलब है कि संचार एक दूसरे के साथ अनुभव बांटने को भी कहते हैं। देखिए, एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि आज का मौसम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो दूसरा मित्र समझ गया कि आज इसका मन अच्छा नहीं है, आज ये पढ़ नहीं पाएगा, इसका मन व्यथित है। तो हम सीधे सीधे यह कह सकते हैं प्यारे शिक्षार्थियों कि संचार एक दूसरे के साथ अनुभव बांटना भी होता है। ऐसी बहुत सारी स्थितियों की आप कल्पना कर सकते हैं, चाहे अपने परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे खेल खेलने के दौरान हो, पठन पाठन के दौरान हो, कक्षा कक्ष में हो, बाजार में हो, या आप कहीं घूमने गए हैं, घूमने के अलावा आप अपने राज्य के बाहर गए हैं। तो देखिए, जब हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से दक्षिण भाषी क्षेत्रों में जाते हैं, या दक्षिण का कोई घूमने वाला व्यक्ति हमारे यहाँ आता है, मथुरा काशी घूमने के लिए आता है, तो हम उसकी बातों को कितनी आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि वो अपने शब्दों के साथ साथ अच्छी भाव भंगिमाओं का भी प्रयोग करता है तारे शिक्षार्थियों। तो इसका मतलब है कि संचार एक समझा गया संदेश है, चाहे वो भाव भंगिमाओं के माध्यम से हो, चाहे शब्दों के माध्यम से हो। और इसका सीधा अर्थ है कि संदेश के माध्यम से हम लोग सामाजिक अंतर संबंध में संचार स्थापित करते हैं, संचार करते हैं, और हम लोग अनुभव बांटने को भी संचार कह सकते हैं, जब हम लोग अपनी बातों को एक दूसरे से साझा करते हैं। अब एक मुझे यहाँ पे कहानी याद आती है तारे शिक्षार्थियों, ये छह नेत्रहीन व्यक्तियों की कहानी है। जब उनको एक हाथी के समीप ले जाया जाता है, तो क्योंकि वो नेत्रहीन थे तो उन्होंने उस हाथी को स्पर्श करना प्रारंभ किया। अब क्योंकि वो नेत्रहीन थे इसलिए उनके पास अपनी स्पर्श इंद्रिय के प्रयोग के अतिरिक्त कोई और दूसरी वो नहीं थी, विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने स्पर्श के माध्यम से उस हाथी को छुआ। और जिस नेत्रहीन व्यक्ति ने हाथी के विशाल पृष्ठ को छुआ तो उसको लगा ये कोई दीवार जैसा है, किसी नेत्रहीन व्यक्ति ने उसके नुकीले दांतों का स्पर्श किया उसको लगा ये कोई दो भाले हैं, जिसने सूर को छुआ उसको लगा कोई मोटा सा सांप है, और जिसने अलग अलग अंग छुए तो उसका अलग अलग उसने वर्णन किया, किसी को कान पंखे जैसे लगे, एक नेत्रहीन को पूंछ जो है रस्सी जैसी लगी, एक को पैर जो है पेड़ जैसा लगा, वृक्ष जैसा लगा। तो प्यारे शिक्षार्थियों, हम देखते हैं कि जब नेत्रहीन व्यक्तियों ने हाथी को छुआ तो उसको समझने के लिए अपनी स्पर्श संवेदना पर ही वो निर्भर रहे, क्योंकि उनकी देखने की क्षमता नहीं थी, तो अपनी स्पर्श संवेदना के आधार पर उन्होंने उसका वर्णन किया। और हम सब जानते हैं कि स्पर्श हमारी पांच इंद्रियों में से एक है, जिसके माध्यम से हम संचार करते हैं, और जैसा कि इन नेत्रहीनों ने किया, तो उन्होंने एक इंद्रिय पर आधारित होकर जितना वो अधिकतम उसका वर्णन कर सकते थे हाथी का उन्होंने किया। इसका मतलब है कि अगर हमारी सभी इंद्रियां अच्छी रहती हैं, हमारी देखने की क्षमता अच्छी रहती है, अगर हम दृष्टि के साथ में उस हाथी को देखते तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि सामने खड़ा हुआ जीव एक हाथी है, न कि एक रस्सी या पेड़ या सांप या एक बड़ी सी दीवार। इसका मतलब है संचार में हम पांच इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और पांच इंद्रियों में स्वाद श्रवण घ्राण के साथ साथ दृष्टि और स्पर्श इंद्रिय का प्रयोग किया जाता है। आप एक उदाहरण के तौर पे देखिए, जब आपकी माता जी आपको मीठी खीर खिलाती हैं तो आप उसको चखते ही बता देते हैं कि वो खीर अच्छी बनी है या नहीं बनी है, मीठी है या नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप अपनी स्वाद इंद्रिय से उस खीर के बारे में एक निर्णायक राय अपनी रख पाते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं उनका भी संचार में विशेष योगदान है। आज हम लोग अगर बांसुरी वादन सुनते हैं तो हमें मिटखट कृष्ण कन्हैया जी की याद आती है। तो इसका मतलब है कि हमारी श्रवण इंद्रिय हमको अपने मनोभाव के हिसाब से एक चित्र बनाने की ओर उन्मुख करती है कि बांसुरी की धुन सुनते ही हमको कृष्ण भगवान की याद आती है। और इसी प्रकार से बाकी की इंद्रियों की हम लोग अपने आप से कल्पना करें और सोचें कि किस प्रकार से जब कोई कर्कश ध्वनि हम सुनते हैं तो कान से अपने हाथ बंद कर लेते हैं, हाथ से अपने कानों को बंद कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हमारे हाथ तैयार रहते हैं कि कोई भी कर्कश ध्वनि हमारे कान में ना जाए। तो इसका मतलब है कि श्रवण इंद्रिय हमारी हमेशा सक्रिय रहती है। लेकिन यही श्रवण इंद्रिय जब अच्छा संगीत सुनती है तो हमको आनंद से भरपूर कर देती है और हम आनंद में नृत्य करने लगते हैं। तो प्यारे शिक्षार्थियों, इस पूरी चर्चा का मतलब यह है कि संचार में हमारी पांचों इंद्रियों का बहुत ही बड़ा योगदान है। ये हमारी इंद्रियां ही संचार को अच्छे से समझने के लिए और संचार को अच्छे से स्थापित करने के लिए सक्षम रहती हैं। ये इंद्रियां हैं स्पर्श, दृष्टि, स्वाद श्रवण यानी सुनना, घ्राण यानी सुंघना। इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से हम लोग संचार स्थापित करते हैं। अब इस चर्चा के दौरान हमने पहले बताया कि प्रागैतिहासिक काल में आदमी हाव भाव से हाथ हिला करके, कंधे उचका करके या अन्य भाव भंगिमाओं से ही संचार स्थापित करता था। तो क्या हम कह सकते हैं कि उस संचार में शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते थे हम? सिर्फ भाव भंगिमाओं के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से हम लोग संचार करते थे। तो इसका मतलब हुआ कि जिस संचार में शब्दों का प्रयोग ना हो, सिर्फ हम लोग भाव भंगिमाओं के साथ में करें, तो उसको हम लोग अशाब्दिक संचार कह सकते हैं। पांचों इंद्रियां प्राकृतिक रूप से हमारे लिए आवश्यक हैं। हम बोलना सीखते हैं भाव भंगिमाओं के साथ स्वीकृति या अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए आंख और हाथ का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि क्या आप मिठाई खाएंगे, जैसे ही आप मिठाई के बारे में सुनते हैं तो आप मुस्कुराने लगते हैं। इसका मतलब है उस मुस्कान से, उस स्माइली से आप अपनी अभिव्यक्ति दर्ज कराते हैं और उसी मुस्कान को आज हम अंग्रेजी में स्माइली भी कहते हैं, जिसका कि बहुतायत प्रयोग हम लोग अपने मोबाइल के माध्यम से करते रहते हैं और जो भी मोबाइल पे हम लोग चर्चा करते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं, चैट करते हैं, उसमें हम स्माइली का बहुतायत प्रयोग करते रहते हैं। तो प्यारे शिक्षार्थियों, क्या एक स्माइली आपकी भाव भंगिमाओं को, आपके विचारों को, आपकी सहमति या असहमति को व्यक्त करने में पूरी रूप से सक्षम होती है? तो मैं कहूंगा हाँ, सक्षम होती है। एक मित्र ने आपसे पूछा कि क्या आज घूमने चलें, और आप उसमें से एक ऐसी स्माइली लगाते हैं जिसमें आप अप्रसन्न दिखते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका मित्र समझ जाएगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है या कोई और समस्या है जिसके कारण आप आज जाने में सक्षम नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जब आप बाइक से जाते हो, ट्रैफिक पुलिस आपसे कहती है हाथ दिखाकर के रुक जाइए, या जिससे अन्य संकेत लगे होते हैं कि इसके आगे आप 20 किलोमीटर से गाड़ी चलाइए या आगे टेढ़ी मेढ़ी सड़क है, ऐसे संकेत बने होते हैं, तो उन संकेतों के माध्यम से ही आप समझ जाते हैं कि आगे हमें किस प्रकार की ड्राइविंग करनी है। तो इस प्रकार के जो संकेत जो संचार में प्रयुक्त होते हैं, जिनको देखकर ही हम समझ जाते हैं और प्रतिक्रिया भी देते हैं, हम अपनी गाड़ी धीरे कर लेते हैं, मोटरसाइकिल धीरे कर लेते हैं, इसका मतलब है वो एक सीधा और सटीक उदाहरण है अशाब्दिक संचार का। तो प्यारे शिक्षार्थियों, दैनिक जीवन में आपने अनेक ऐसे उदाहरण देखे होंगे जिनको देखकर ही आप समझ जाते हैं कि ये अशाब्दिक प्रकार का संचार है। तो उसमें से एक होता है कि चेहरे के भावों से, मतलब किसी ने आपके ऊपर में भावें चढ़ा ली है या किसी ने आपके कार के आपको देख लिया है, इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि अमुक व्यक्ति हमसे गुस्सा है। और यहाँ पे एक और उदाहरण आता है जिसको कि हम लोग बहुत भली भांति जानते हैं, महात्मा गांधी के तीन बंदर। तीनों बंदर में एक बंदर कहता है बुरा मत कहो, दूसरा बंदर कहता है बुरा मत देखो, और तीसरा बंदर प्रदर्शित करता है बुरा मत सुनो। इसका मतलब है अगर शरीर संचलन से, शरीर के संचलन से शरीर को इधर उधर हिला करके, जैसे एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ प्यारे शिक्षार्थियों, आजकल हम लोग अपने मित्रों से विदा होते समय बाय बाय बोलते हैं, उसको विदा लेते हैं। अब देखिए बाय बाय में आप हाथ हिलाते हैं दो बार या तीन बार, तो वो समझ जाता है कि अब हमारे और इसके बीच में संवाद भंग हो रहा है और ये अपने घर की ओर जा रहा है और मुझे भी अपने घर की ओर जाना है। तो इसका मतलब है कि शरीर के संचलन से भी हम लोग अशाब्दिक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं और ये बहुत ही प्रभावी होता है। एक उदाहरण और मैं यहाँ पे रखना चाहूंगा, आपकी पुस्तक में भी है ये उदाहरण कि बल्लेबाज के आउट होने पर अंपायर एक उंगली उठाकर इशारा करता है। उस एक उंगली को देख लेने मात्र से मैदान में खड़े हुए 11 विपक्ष टीम के खिलाड़ी और 2 ये खिलाड़ी समझ जाते हैं कि अमुक व्यक्ति आउट हो चुका है। इसका मतलब है कि अशाब्दिक संचार में बहुत प्रभाव होता है और त्वरित रूप से ये समझ में आता है सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले समूह को। भारतवर्ष परंपराओं का देश रहा है प्यारे शिक्षार्थियों, हमारे आदर संकेत नमस्ते को स्वीकार किया है। तो हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं भारतवर्ष की, वो इतनी अच्छी रही हैं, वो इतने अच्छे दर्शन के साथ आगे बढ़ी हैं कि उसकी स्वीकारिता आज हजारों वर्षों के बाद भी वैश्विक स्तर पे देखी जा रही है। और ये जो हाथ मिलाने की जो परंपरा है, इसको आप जनसंचार विषय के अध्ययन के अंतर्गत नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या अशाब्दिक संचार कहेंगे। अगर परीक्षाओं में आपको कोई उदाहरण लिखने के लिए आए कि अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण लिखिए, तो आप नमस्ते लिख दीजिए, आपको पूरे अंक मिलेंगे और इससे पूरी भारतीयता की झलक भी आपको देखने को मिलती है। अब चाहे भारत हो, श्रीलंका हो या थाईलैंड हो, इन सभी देशों में पहले से ही नमस्ते को स्वागत का प्रतीक माना जाता रहा है। आप भगवान के समक्ष पूजा अर्चना करने के लिए जब बैठते हैं तब भी हाथ जोड़ कर बैठते हैं, और ऐसे में इस संचार को हम लोग जिसे अशाब्दिक संचार हम कह रहे हैं, उसके माध्यम से आप एक निश्चित मनोभाव के साथ अपने भगवान के समक्ष बैठते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। और समस्त संचारों का लगभग 80% अशाब्दिक होता है। अब आप ये देखिए कि विशेषज्ञ क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं कि मानव के बीच होने वाले टोटल कम्युनिकेशन का, संपूर्ण संचार का 80% अशाब्दिक होता है। इसका मतलब है कि संकेत, भाव भंगिमाएं, इन्हीं से हम लोग अपनी बातों को व्यक्त करने में बहुत अच्छे से सक्षम होते हैं, इनके माध्यम से अच्छा संचार हम लोग स्थापित करते हैं। शिक्षार्थियों, आप लोगों ने अशाब्दिक संचार के बारे में अच्छे से जान लिया है, आपके मन में और बहुत सारे उदाहरण आ रहे होंगे, तो इनको भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपको आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्कशीट भी दी जाएंगी जिनका उत्तर आपको लिखना है। हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो आपकी स्वमुद्रित सामग्री आपके हाथ में है या आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है या मोबाइल पर है, इनको पढ़ते पढ़ते आप जब इसका अध्ययन अच्छे से कर लेते हैं, तो हम अपेक्षा करते हैं कि वो वर्कशीट या कार्य पत्रक आप अच्छे से हल कर पाएंगे। और आपको हल करना भी चाहिए। साथ ही साथ वर्ष के अंत में आपको जब हम टीएमए के लिए कहेंगे, ट्यूटर मार्ग असाइनमेंट के लिए कहेंगे, शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र के लिए कहेंगे, तो उनको करने में भी आपको आसानी होगी, आप अच्छे से उनको कर पाएंगे और जिन 20 अंकों की व्यवस्था टीएमए के माध्यम से आपको दी जाती है वो आप अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। तो प्यारे शिक्षार्थियों, अशाब्दिक संचार के बाद अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं मौखिक संचार के बारे में। मौखिक संचार इसका मतलब है मानव द्वारा बोली का प्रयोग विकसित किए जाने के बाद हम मौखिक संचार करने लगे। देखिए अशाब्दिक में तो हमने शब्दों का प्रयोग नहीं किया था, हमने सिर्फ भाव भंगिमाएं संकेत बनाए थे, चाहे वो आदिवासियों द्वारा गुफाओं में बनाए गए संकेत हों या दूसरे अन्य संकेत हों जो आज हम ट्रैफिक लाइट पे देखते हैं या स्माइली के रूप में देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय समय मानव का विकास हुआ और हम लोगों ने बोलियों में बात करना शुरू किया, बातचीत करनी शुरू की, तब हम मौखिक संचार करने लगे। मौखिक संचार का मतलब होता है अगर आपसे मैं कहूँ कि आसमान, तो आप समझ जाएंगे आसमान का मतलब है ऊपर, ये जो नीला आसमान है इसके बारे में बात की जा रही है। इसका मतलब है कि एक शब्द का अर्थ आप निकाल लेते हैं, आसमान या तो नीला या ऊंचा, इनकी बात हो रही है। इसका मतलब है कि एक शब्द में कई कई सारे अर्थ छुपे होते हैं और आप उसको अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उनका आकलन करके उनका सही निरूपण कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आसमान ऊंचा है, आसमान नीला है, तो दोनों में आप देखिए आसमान ऊंचा और नीला दोनों है, तो आप समझने का अर्थ है कि आप किस प्रकार से इस बात को लेते हैं। तो मौखिक संचार में यह है कि हम लोग अपने मुख से शब्दों के माध्यम से संचार स्थापित करते हैं। और जब भी हम लोग अपने प्राचीन भारत की बात करते हैं, मनीषा की बात करते हैं, वेद पुराणों की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, तो प्यारे शिक्षार्थियों हमें पता चलता है कि प्रारंभ में ये बोले गए वाक्य थे, बोले गए शब्द थे, इनका रूप मौखिक रूप था। और हम लोग देखते हैं कि हमारे गुरुकुलों में, हमारे आश्रमों में बहुत लंबे काल तक मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये संचार स्थापित होते रहा। और बहुत बाद में जब हम लोगों ने लिपियों का अध्ययन कर लिया, लिपियों में हम लोग अपने संचार को स्थापित करने लगे, तब हमने इनको शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में और मनीषाओं में निरूपित करने का, लिखने का प्रयास किया और आगे लिखित रूप में उपस्थित किया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि भारत में हमारी ज्ञान की एक सशक्त परंपरा रही है जिसको कि मौखिक रूप से वर्णन किया जाता है। तो जो पंडित जी हमको कथा सुनाते हैं सत्यनारायण भगवान की मौखिक रूप से, जो हमारे हाथ में उस समय लिखित नहीं होती है, पंडित जी सुनाते हैं, इसका मतलब है कि वो मौखिक संचार है। ठीक इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति हमसे कुछ कहता है और हम उसका अनुकरण करते हैं, तो वो देखिए मौखिक रूप से ही हमसे कह रहा है, वो कहीं लिखित रूप में नहीं है। तो इसका मतलब है मौखिक संचार के भी बहुत सारे लाभ उसमें निहित है। जैसे हम कह सकते हैं कि मौखिक संचार निरंतर तथा स्वाभाविक होता है। मौखिक संचार एक दूसरे की बातों को समझने में एक आसानी उत्पन्न करती है। मौखिक संचार में शब्दों का चयन श्रोता के अनुरूप होता है। एक मैं यहाँ पे उदाहरण देना चाहूंगा, जैसे कार्यालय में हम अपने अधिकारियों से बात करते हैं, तो जब बात करते हैं तो बड़े सहज रूप में रहते हैं, उस समय थोड़ी सी हल्की बातें भी हो जाती हैं, लेकिन जब लिखित रूप से हम लोग कोई चीज प्रस्तुत करते हैं तो उसमें बिल्कुल औपचारिक तौर पे हम लोग शब्दों का चयन करते हैं और उस रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि शब्दों का चयन सामान्यतः श्रोता के अनुरूप होता है। और कई कई बार मौखिक संचार में अशाब्दिक संचार का भी सहयोग रहता है। मान लीजिए आपकी कोई चीज नकारात्मक रूप से जोर से कहनी है कि नहीं मुझे खाना नहीं खाना है, तो आप देखिए उस समय हाथ भी हिला के बोलते हैं, नहीं माता जी मुझे खाना नहीं खाना है। तो हम कह सकते हैं कि मौखिक संचार में अशाब्दिक संचार का भी सहयोग होता है। प्यारे शिक्षार्थियों, मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि संचार या संचार करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत होता है, मौजूद होता है। मौखिक संचार के वक्त वक्ता तथा श्रोता के बीच एक बहुत करीबी रिश्ता विकसित हो जाता है। हम एक दूसरे को समझ जाते हैं, भाव भंगिमाओं के माध्यम से समझ जाते हैं, हाव भाव के माध्यम से समझ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम मौखिक संचार स्थापित करते हैं। लेकिन प्यारे शिक्षार्थियों, मौखिक संचार की बहुत सारी हानियां भी हैं, बहुत सारे इसके अवगुण भी हैं। जैसे कई बार आपने कहा होगा, अरे आपने बोला था, हमने नहीं सुना, हमें समझ में नहीं आया। इसका मतलब है कि बोले गए शब्द हवा में लुप्त हो जाते हैं, खो जाते हैं। इसका मतलब है, हम ये कह सकते हैं कि शब्द जो मौखिक रूप से प्रस्तुत किए गए हैं वे अस्थायी होते हैं। बोले गए शब्द लिखित संचार जैसे स्थायी नहीं होते हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि जो कुछ हम सुनते हैं प्रायः उसको एक अंतराल के बाद हम भूल भी जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मौखिक संचार के साथ सहयोग करने वाले अशाब्दिक संचार को अन्य तरीके से भी हमको समझना चाहिए, जिससे कि हम दूसरी संस्कृति वाले लोगों को भी वो बातें समझा सके। अब देखिए, एक यहाँ पे छोटा सा उदाहरण देते हैं हम लोग कि संचार के कुछ आधुनिक साधन, जैसे 1878 में ग्राहम बेल द्वारा खोजा गया टेलीफोन और 1901 में मार्कोनी द्वारा आविष्कृत रेडियो मौखिक संदेश का प्रयोग करते हैं। इन आविष्कारों के सहायता से पल भर में लंबी दूरी को तय करना आसान हो जाता है, संचार पहुंचाना आसान हो जाता है। तो मौखिक संचार में जिस प्रकार से लाभ थे, उस प्रकार से हानियां भी थी। अब हम प्यारे शिक्षार्थियों आगे बढ़ते हैं और जानने समझने का प्रयास करते हैं कि लिखित संप्रेषण क्या होता है। और आप मेरा विश्वास कीजिए कि सबसे प्रभावी संप्रेषण लिखित संप्रेषण होता है। आप तो मानवता के प्रारंभिक इतिहास की बात कर लें, भाषा और लेखन के विकास की बात कर लें, लिपियों के विकास की बात कर लें, चाहे वो संस्कृत लिपि हो या देवनागरी लिपि हो या और वैश्विक स्तर पर बहुत सारी लिपियां हैं, उनका आप देख लें। और साथ ही साथ जब सबसे पहले भारतवर्ष में लिपियां बन रही थी, चीन में लिपियां बन रही थी, मिस्र के लोग द्वारा कागज खोजे जाने की बात हम लोग समझते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि चमड़े के ऊपर, ताड़पत्र के ऊपर, भोज पत्र के ऊपर कई कई बार हमको संचार देखने को मिला। लेकिन सबसे पहले जो हम लोग कागज खोजने की बात मानते हैं वो एक क्रांति की बात होती है, क्योंकि उसके बाद ही हम लोग लिखित संचार के बारे में आगे बढ़ पाते हैं। अब लिखित संचार के लिए जरूरी है कि भाषा हो, भाषा के अक्षर हो, साथ में लिपि हो, उसकी व्याकरण भी हो, और संचारक को उस विशेष भाषा का ज्ञान भी हो। तो इस तरीके से इन सब बातों का अध्ययन अगर हम लोग कर लें तो लिखित संचार में हम अपने आप को निपुण रूप से स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। अब एक उदाहरण के तौर पे हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए अंग्रेजी भाषा में लिखने के लिए शब्द के अच्छे ज्ञान के अतिरिक्त वाक्य के भाग को भी जानना जरूरी होता है कि एक वाक्य में कितने भाग हैं, उनके द्वारा क्या बातें कही जा रही हैं। तो इस प्रकार से भी हम लोग लिखित संचार के महत्व को समझ सकते हैं, प्यारे शिक्षार्थी। साथ ही साथ लिखित संचार में मैंने पहले भी कहा कि कागज की खोज जो कि 15वीं सदी में जोहान गुटेनबर्ग द्वारा की गई, कागज की खोज और कालांतर में 15वीं सदी में जोहान गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रा के आविष्कार से लेखन के साथ साथ जो लोगों को ज्ञान उपलब्ध हुआ वो एक मील का पत्थर था। उसको मुद्रित माध्यमों में विस्तार से पठन पाठन में आज लाया जाता है। आज जितनी भी पुस्तकें हैं, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी अखबार पत्रिकाएं जर्नल हैं, वो इसलिए भी लोकप्रिय हुए क्योंकि वो मुद्रित रूप से थे हमेशा उनको उपलब्ध माना जाता था पढ़ने के लिए, संदर्भ देने के लिए। इसलिए लोगों में लिखित सामग्री को लेकर के संचार स्थापित करने में बहुत सहायता मिली और समाचार लोग एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र तक पहुंचाने लगे और उसके लिए प्रयोग हुआ लिखित संचार का, चाहे समाचार पत्र हो, चाहे पत्रिकाएं हो, या संपादक के विचार हो, संपादकीय हो, सुधार हो, पुनर्लेखन हो, सब में देखिए हम लोग लेखन की बात करते हैं, शब्दों की बात करते हैं, भाषाओं की बात करते हैं, वाक्यांशों की बात करते हैं, वाक्य संरचना की बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक लेखक के लिए लिखना एक ऐसा व्यक्तिगत कार्य है जिसमें बहुत सारी तैयारी, कठोर श्रम सम्मिलित होता है, बोलने वाली भाषाओं का प्रयोग किया जाता है जिससे कि वो संचार स्थापित करता है। आज आप अपने हाथ में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल लेके बैठे हैं, ये भी लिखित रूप से आपके समक्ष है। आप जब परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं तो लिखित रूप से अपनी बात रखते हैं जिससे आपको अंक मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि लिखित का प्रभाव मौखिक के प्रभाव की अपेक्षा बहुत अधिक है। और अगर हम लोग प्रभाव के साथ साथ लिखित संचार के लाभ की बात करें तो लिखित संचार शब्दों तथा विचारों को स्थापित करने में एक स्थायित्व प्रदान करता है। लिखित संचार से ज्ञान तथा सूचना उन समस्त लोगों को उपलब्ध होती है जो पढ़ सकते हैं, और लिखित संचार से विचारों का प्रसार होता है। अब लिखित संचार के अन्य रूप हैं, जैसे मैंने कुछ उदाहरण पहले भी दिए। मान लीजिए आप अपने अभिभावकों को पत्र लिखते हैं, या सरकारी कार्यालयों में परिपत्र जारी किया जाता है, आदेश जारी किया जाता है, प्रतिवेदन किया जाता है, वो भी लिखित रूप का एक लिखित संचार का अच्छा प्रमाण है। इसके और उदाहरण हैं प्रारूप पत्र, प्रश्नावली, न्यूज़लेटर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, हैंडबिल, पोस्टर और पुस्तक विशेष रूप से, और सूचना पत्र। आप देखिए सूचना पत्र मतलब नोटिस बोर्ड पर लिखी गई बातें, आप तुरंत उसको संदर्भ में लेते हैं, उस पर काम करने लगते हैं। जब आप विद्यालय के अंदर होते हैं, सूचना पत्र पढ़ते हैं कि कल विद्यालय बंद रहेगा, तो आप उससे अमल करते हैं और हम उस दिन विद्यालय नहीं जाते हैं। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति के लिए लेखन का कौशल बहुत आवश्यक है। आज आप जो कुछ लिखते हैं वही संरक्षित होता है, चाहे आप पुस्तकों के रूप में लिखें, चाहे किसी लेख के रूप में लिखें। और जब से इंटरनेट का विकास हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब आया है, तो लेखन शैली को नई दिशा मिली है और नए अर्थ और नए आयाम मिले हैं। आज आपका लिखा हुआ तुरंत से तुरंत कुछ ही सेकंडों में, कुछ ही मिनटों में अमेरिका में बैठे आपके पाठक श्रोता पढ़ सकते हैं। इसका मतलब है लिखे गए शब्दों द्वारा स्थापित किए जाने वाले संचार का प्रभाव और परिणाम बहुत ही सार्थक और सटीक होता है। और एक लेखक एक कुशल संप्रेषक हो सकता है, एक नाटककार एक उपन्यासकार एक कहानीकार अच्छा संप्रेषक हो सकता है। वो अपने शब्दों के जादू के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से अपनी बातों को निबंध के रूप में, भौतिक विषयों के रूप में, किताबों के माध्यम से आप तक प्रस्तुत करता है। इसलिए हम लोग ये मान के चले कि जो लिखित संचार है वो बहुत ही प्रभावी संचार होता है। और लिखित संचार ने ही मानव को इतिहास प्रदान किया है, और कागज तथा मुद्रण के अस्तित्व में आने के बाद इसका विकास हुआ है। और साथ ही साथ लेखन से आप आपस में बांटे जाने वाली गतिविधियों को एक दूसरे से साझा करते हैं, और वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंटरनेट और कंप्यूटर ने लिखित संचार को एक नया अर्थ और आयाम प्रदान किया है
जी।
अब हम लोग जानेंगे कि कैसे कैसे और कैसे हम लोग संचार के विभिन्न प्रकार के बारे में जाने। इसमें से एक होता है अंतः वैयक्तिक संचार और दूसरा होता है अंतर वैयक्तिक संचार। तो इन संचार के माध्यम से हम लोग और भी आगे जानेंगे कि समूह संचार क्या होता है, लोक संचार क्या होता है। तो जैसे कि हमने कहा कि अंतर वैयक्तिक संचार है जब आप स्वयं से बात करते हैं और कोई निर्णय लेते हैं। एक उदाहरण के तौर पे जो आपके सेल्फ लर्निंग मटेरियल में भी दिया गया है प्यारे शिक्षार्थियों, कि एक क्रिकेटर जब बॉल मारने से पहले सोचता है कि अमुक बॉलर कैसा है या उसकी बॉल कैसे आती है, और उसका निर्णय लेकर के वो शॉट मारता है, तो देखिए वो अपने आप से बातें करता है कि मुझे इस प्रकार से इस बॉल को खेलना है। तो ये तो हो गया अंतः व्यक्तित्व, यानी जब हम खुद से संवाद करते हैं, स्वयं से संवाद करते हैं, तो वो हो गया अंतः व्यक्तित्व। और जब हम किसी अन्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, खरीदारी करने के लिए जाते हैं, अपने माता पिता भाई बहन से मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संचार। मतलब किसी के समक्ष बैठकर आपस में संवाद करना अंतर्वैयक्तिक संचार के अंतर्गत आता है। अब हम दोनों में अंतर समझ लें तो हम देखेंगे कि अंतर्वैयक्तिक संचार एक तो औपचारिक रूप से होता है और दूसरा अनौपचारिक रूप से होता है। औपचारिक रूप के अंतर्वैयक्तिक संचार में हम बैठक सम्मेलन में भाग लेने को समझते हैं, विक्रय काउंटर पे जाते हैं, या रोजगार या साक्षात्कार के समय जो हम लोग करते हैं बातें वो होती हैं। और साथ ही साथ अनौपचारिक संचार में, अनौपचारिक अंतर्वैयक्तिक संचार में मित्रों के साथ, परिजनों के साथ निजी चर्चा जब करते हैं वो अनौपचारिक होती है। गलियारों में खड़े होकर अपने दोस्तों से बातें करते हैं वो अनौपचारिक चर्चा होती है। कैंटीन या रेस्टोरेंट में खड़े होकर के बातचीत करते हैं वो अनौपचारिक चर्चा होती है। कि प्यारे शिक्षार्थियों, मुझे लगता है कि आप अंतर्वैयक्तिक और अनौपचारिक और औपचारिक संचार में भी विभेद करना सीख गए होंगे। प्यारे शिक्षार्थियों, इसी पाठ के अंत में आपको समूह संचार तथा लोक संचार के बारे में बताया गया है। तो मैंने पहले भी उदाहरण दिया था, कक्षा कक्ष में जब अध्यापिका आपसे बात कर रही है तो एक समूह संचार स्थापित हो रहा है। समूह संचार का मतलब हुआ है कि उस कक्षा में जितने भी विद्यार्थी शिक्षार्थी बैठे हैं उनका एक निश्चित ध्येय है और अध्यापिका उनको पढ़ा रही है और वो एक ही श्रेणी के सभी लोग हैं, एक ही परिस्थिति के सभी लोग हैं और उनसे संचार हो रहा है। इसी के साथ ही साथ जो लोक संचार होता है, मान लीजिए किसी राजनीतिक रैली में आप जाते हैं जिसमें कि आपका नेता सभी लोगों को जानता नहीं है लेकिन उसकी बातें सभी को एक धरातल पे लाने का प्रयास करती हैं, जिसको हम लोग संचार कहते हैं। तो कक्षा कक्ष में होने वाले संचार को हम कहेंगे समूह संचार, क्योंकि तो यहाँ पे सभी के निश्चित उद्देश्य हैं, पढ़ने वाले का निश्चित उद्देश्य है, पढ़ाने वाले का है। और ऐसे ही नेताजी जब भाषण करते हैं तो उसको लोक संचार कहते हैं।